আমার বলিতে প্রভু আর কিছু নাই, আমার বলিতে তুমি আমার মাত্র পিতা বন্ধু ভাই, ধন জন গৃহ দাস তোমার বলিয়া, ধন জন গৃহ দাস তোমার বলিয়া, রক্ষা করি আমি মাত্র সেবক হইয়া, রক্ষা করি আমি মাত্র সেবক হইয়া, তোমার কার্যের তরে উপার জীব ধন, তোমার কার্যের তরে জীব ধন, তোমার সংসারে ব্যয় করিব বহন, তোমারে সংসারে করিব বহন, ভালো মন্দ নাহি জানি সেবা মাত্র করি, ভালো মন্দ মাত্র করি, তোমার সংসারে আমি বিষয় প্রহরী, তোমার সংসারে আমি বিষয় প্রহরী, তোমার ইচ্ছায় মোর ইন্দ্রিয় চালনা, তোমার নিজ সুখ লাগি কিছু, নিজ সুখ লাগি কিছু নাহি করি আর, নিজ সুখ ভক্তি বিনোদ বলে তব সুখ সার, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে হরে,
আপ লোক আধা আধা বলেন না পুরা পুরা বলেন,
হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম রাম রাম
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य स्तोत्र सत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की श्री श्री राधा गिरिधारियों की स्निताय गौर सुंदर की समवेत भक्त वृंद की ताय गौर हरि प्रेमानंदी हरे कृष्ण। तो ये भजन जो आप लोग ने सुने उसके अर्थ भी सुनना चाहेंगे ना? नहीं तो भक्तिनोद ठाकुर कहते हैं, आमारा बोलिते प्रभु आरा किछु नहीं। भक्तिनोद ठाकुर एक सफल गृहस्थ भक्त थे जिनके परिवार की संख्या एक डजन था। कितना था जानते ना? कितने नंबर होते हैं एक डजन? हाँ, तो आप लोग तो छोटे हैं, ये इनके समान नहीं है। तो उन्होंने भक्त थे तो उनका भाव क्या है, वो बोलते हैं कि हे प्रभु मेरा बोल करके कुछ है ही नहीं मेरा ना, आमार मैं किसको बोल सकता हूँ कि मेरा, बंग भाषा में मेरा को आमार बोलते हैं, ये आमार है कुछ नहीं बोलने के लिए आमार ना। आमार बोली थे प्रभु आर किछ नहीं, कुछ भी नहीं मेरे कहने के लिए, केवल एक वस्तु के अलावा, केवल एक चीज है जिसको मैं ताल ठोकर बोलता हूँ सचो ये तो मेरा है, बाकी कोई चीज मेरा नहीं। देखिए भक्त क्या भाव जानते हैं, किसको बोलते हैं? बोलते हो इसी एक को छोड़ करके बाकी ममत तो कहीं में नहीं है, मेरा कुछ है ही नहीं, केवल यही एक मेरा है। उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, बहुत बड़े रैंक में थे, लेकिन वो बोलते मेरा कुछ नहीं है केवल एक चीज मेरा है दुनिया में। आप बोलो किसको बोलते हैं मेरा? सोचते तो होंगे भाई किसको मेरा बोलते? अपना शरीर को नहीं, तो केवल कृष्ण को ही अपना बोलते। बोले प्रभु केवल आप ही मेरा है, बाकी मेरा कोई नहीं। मेरा बोल करके केवल आप ही है और कोई नहीं, कुछ नहीं। आमार बोली थे प्रभु आर किछ नहीं, तुम्ही आमार मात्र पिता बंधु भाई। बोले मैं तेरा क्या हूं? अगर पूछेंगे तो केवल मेरा है मानते, और कोई कुछ नहीं है, केवल मैं ही हूं ना, क्या हूं मैं तेरा ना? आप हमारे पिता है, बंधु है, भाई है, पत्नी भी है, सूत सुता दासी दास जो कुछ है सब आप ही है। सही तो संबंध है सवे हमारा प्रयास, मैं यही प्रयास करता हूँ, यही चेष्टा करता हूँ कि जो कुछ मेरे पत्नी है, पति है, पिता है, बंधु है, भाई है, नौकर चाकर वाकर जो भी सब है, सभी के साथ एक ही रिलेशन में रहा है, क्योंकि वो सब आपके हैं, मैं आपका हूँ, इसीलिए नाता है। यही मेरे प्रयास, मेरे उनके साथ संबंध किस लिए है, क्योंकि एक ही परिवार के सब आपके हैं, मैं भी आपका हूँ, आप मेरे हैं, इस सभी के भी आप हैं, इसीलिए संबंध है, यही प्रयास है। और धन जन गृह दास तुम्हार बोलिया रक्षा करी आमी मात्र सेवा कहिया। बोले तो फिर जब आपका कुछ नहीं है, घर बाड़ी मकान दुकान कुछ आपका नहीं है, तो कहाँ की ड्यूटी कर रहा है तूने फिर? आठ घंटा, नौ घंटा, दस घंटा, कोई मुझे दोपहर में पूछ रहे थे, बोले क्या करें, इतने काम करना क्यों करते हैं? बोले मैं काम इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं तो आपका हूँ, आप मेरे हैं, और आपका ये संसार है, ये मेरा संसार नहीं है, ये सब आपका है, तो आप मुझे दायित्व दें, तो ये काम कर, तो आपका आज्ञा मुझे पालन करना पड़ेगा। तो इसलिए जो धन जन गृह दास सब आपके हैं, इसलिए उनके रक्षा करने के लिए दायित्व आप दिए हैं, तो आपके सेवक होने के नाते मैं आपको ड्यूटी करता हूँ, मैं आपको ड्यूटी इसलिए करता हूँ कि आपके सेवक हूँ। ये सब देखिए किस प्रकार की भावना है, ये भावना रहेगा संसार फंस कैसे सकते, कैसे फंस सकते? सेवा कहिए तुम्हारा कार्य रे तरे उपार्जीव धन। बोले मैं इनकम करता हूँ, धन उपार्जन करता हूँ, किस लिए? आपके लिए, मेरे लिए नहीं, ये आपके संसार है, आपके सब है, तो आपके लिए मैं आपका हूँ, इसलिए काम करूँगा, काम आपके लिए करूँगा। तुम्हारा कार्य रे तरे उपार्जीव धन, आपके काम करने के लिए मैं धन उपार्जन करूँगा। धन उपार्जन करके क्या करूँगा? FD बनाऊंगा, बैंक बैलेंस रखूंगा। बोले नहीं, आपके काम के लिए इनकम करूंगा तो तुम्हारा संसार व्यय करीब वहन, आपके संसार के लिए खर्चा करूंगा, इसी के लिए तो कमाया था, आपके संसार के लिए कमाता हूं और आपके संसार में खर्चा करता हूं, करीब वहन। भालो मंदा नहीं जानी। बोला इसमें अच्छा होगा कि बुरा होगा मैं मूर्ख में क्या जानता हूं, मुझे कुछ नहीं जानता, मैं जानने के प्रयास भी नहीं करता, जान भी नहीं सकता, क्यों टाइम खराब करूं? तो इसलिए अच्छा होगा बुरा होगा ये मैं चिंता नहीं करता, भला मंद नहीं जानी, मैं नहीं जानता हूं अच्छा होगा कि बुरा होगा, लेकिन सेवा मात्र करी, मैं सेवा करता रहता हूं, क्यों? आपके सेवक हूं, आप मुझे बोले सेवा करो, वैसे करते जा रहा हूं। सेवा मात्र करी तुम्हारा संसार आमी विषय प्रहरी। बोले कैसी सेवा करता है किसान सर? बोले इसलिए ड्यूटी के हिसाब से सेवा करता हूँ, जैसे प्रहरी, प्रहरी बोलते हैं चौकीदार, करेक्ट, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के जो आठ घंटा, जब आठ घंटा होता ना, हाँ तीन शिफ्ट करते हैं, जितने समय उनको जिस समय करता है, तो आपके संसार के सिक्योरिटी हूँ, विषय प्रहरी हूँ, तो इसलिए मेरा टाइम टू टाइम ड्यूटी देना ही पड़ेगा, इसलिए मैं ड्यूटी दे रहा हूँ, बाकी उन्हें जानता नहीं कि अच्छा कर रहा हूँ कि खराब कर रहा हूँ, तो आप ही बोलेंगे, मैं कैसे बोल सकता हूँ? मैं तो ड्यूटी में रहता हूँ और आप खुश है कि नहीं है, मैं तो प्रयास मेरे तरफ से कर रहा हूँ, नहीं मेरी स्थिति है, तुम्हारा संसार अमी विषय प्रहरी, भला मंद नहीं जानी, सेवा मात्र करी। तुम्हारा इच्छा है मोर इंद्रिय चालना। क्या बोलते हैं? बोलते मेरा जो इंद्रिया है, हमारे पास 10-11 इंद्रिया है, 5 तो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने वाले जो ज्ञान इंद्रिय कहते हैं, जिनके द्वारा नॉलेज ज्ञान प्राप्त होता है, ये मशीन 5 लगाया गया हमारे शरीर में, जिनके द्वारा ज्ञान मिलता है, और 5 ऐसे मशीन है जिसके द्वारा काम करते हैं, एक्टिवेशन करते हैं, और उनके ऊपर एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हुए मन, टोटल मिलकर के 11 है, वो सारे मेरे बोलते हैं, मेरा मन, आँख, नाक, कान, जीवा, स्पर्श, हाथ, पैर, सभी कुछ जो मेरे पास हैं, वो कैसे चलता है, एक्टिव कैसे काम करता है? ना आपकी इच्छा के अनुसार, तुम्हारा इच्छाए मोर इंद्रिय चालना। आपकी इच्छा ना हो तो मैं देखूंगा ही नहीं, आपकी इच्छा ना हो तो मैं उठूंगा नहीं, कुछ भी नहीं करूंगा, आपके मेरा एक ही लक्ष्य है, एक ही डिसीजन है, आपके इच्छा के अनुसार मेरे इंद्रिय काम करेंगे, आपका डायरेक्शन। तुम्हारा इच्छा है मोर इंद्रिय चालना, क्या क्या चरण, न श्रवण दर्शन घ्राण भोजन वासन। श्रवण सुनने का, श्रवण देखने का, घ्राण सांस लेने का, और भोजन खाने का जो इच्छा, ये सारे आपकी इच्छा के अनुसार। निज सुख लागे किछु नहीं करी यार, आपने सुख के लिए मैं कुछ करता ही नहीं, जो आपके सेवक हूं, आपके नौकर हूं, तो मेरे लिए थोड़ी करूंगा, नौकरी आपके लिए कर रहा हूं। निज सुख लागे किछु नहीं करी यार, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं करता हूं। भक्त विनोद बोले तब सुख सार, केवल आपके सुख की सार है, आप सुखी हो जाए मैं भी सुखी हो जाऊंगा, मेरे जीवन के एक ही लक्ष्य है आपको सुखी करना है। ये इतने बड़े सफल गृहस्थ थे, कितना भाव, कितना उच्च कोटि का है, कितने उच्च कोटि का है, इस प्रकार के विचार में रहना घर में। और जो भी इतने बड़े परिवार थे, उनके लिए उपार्जन करना, सबके लिए सामान जुटाना, बोलते नहीं कोई सामान किसी के सुख के लिए नहीं, ये तो सब आप लोग उनके हैं, तो इसलिए मैं आपकी देखभाल कर रहा हूं। तो जितने आपके जीवन बचाने के लिए आवश्यकता, इतना ही सामान मिलेगा, ज्यादा नहीं। मैं अकेला आप 12 है, कैसे कमा के दे पाऊंगा आपको? आप जो जो लिस्ट देंगे सब नहीं दे पाऊंगा। मिनिमम रिक्वायरमेंट मीन्स हमको शरीर चलाने के लिए कुछ पेट्रोल डालना पड़ेगा गाड़ी में, तो जो भी डीजल इंजन में डीजल, पेट्रोल के आस में गैस जो भी डालेंगे, तो जो मैं दूंगा कुछ ना कुछ, स्थान काल में जो मिलता है कुछ ना कुछ दूंगा। आप डिमांड करेंगे हम वो चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं मिलेगा। जो मैं आपको खाने के लायक कुछ वस्तु हम जुगाड़ करके देंगे, पहनने के लायक जो शरीर को ढांकने के लिए कोई वस्त्र ऐसे देंगे, आपके हिसाब से ये नहीं हो सकता। वो कहें उनके रोटी कपड़ा मकान को देखभाल करो, इतने कमाई करो, मैं यही करूँगा। लेकिन आप बोलेंगे हमको जीन बोरी वाला कपड़ा चाहिए, ये चाहिए, ये डिजाइन चाहिए, ये सब आजकल के अप टू डेट स्टाइल, हम स्टाइल नहीं देख सकते। सिंपल लिविंग, सादा जीवन में रहना है। जब एक चटाई डाल करके हम सो सकते हैं, आराम से सो सकते हैं, तो क्यों कोई इतने बड़े फर्नीचर ला करके डालें घर में? 60,000 का एक खट, इसमें सोने से हमारा लंबा चौड़ा बढ़ जाएगा, वेट बढ़ जाएगा। चटाई में डालने से क्या, नींद तो दोनों में ही होगा, इसमें जितना नींद होगा इतनी। और चटाई डालने से उठा करके 2 मिनट में घर को झाड़ू पोछा सफाई कर सकता हूँ, और ऐसे मैट्रेस डालूँ उठ के ऊपर, हाई कॉस्टली फर्नीचर पलंग डालूँ, तो उसको तो सफाई कर ही नहीं सकता, ऐसे गंदे में रहेंगे, क्या मिलेगा आपको, है ना? नहीं तो मतलब जितने सरल हो सके, इतने जो आप सो सकते हैं यही व्यवस्था में, इतने सो सकते हैं, जो इसी को खा सकते हैं इसे खा सकते हैं, इतना नहीं कर सकते, इसे पहन सकते हैं तो इसी को पहन सकते हैं। तो इसी प्रकार जितने मिनिमम आवश्यकता इस हिसाब से देंगे, लेकिन विचार उन्हीं के लिए होना चाहिए, क्योंकि सब आप लोग उनके हैं, उन्हीं के सुख का विचार होना चाहिए, बोलते हैं उच्च विचार। भावना अपना अंदर, विचार बहुत उच्च स्तर का होना चाहिए, रहन सहन बहुत सादा होना चाहिए। लेकिन हम लोग आजकल क्या करते हैं, रहन सहन हाई स्टाइल, इतने अप टू डेट हाई स्टाइल का रहन सहन, विचार कुत्ते से भी भद्दा है। कुत्ते तो फिर भी थोड़ा बेचारा पेड़ के नीचे रहता है, आवाज करता है लेकिन आंख दिखाने से भाग जाता है, लेकिन हम लोग तो सीधा पॉडकास्ट करते हैं, टेररिज्म करने बैठ जाते हैं सीधा हमार पेट झगड़ा झाटे। इतने निम्न स्तर पशु स्तर के विचार है, और रहन सहन के लिए तो राजा महाराजा की तरह सभी स्टाइल चाहिए, कोई आवश्यकता तो ऐसे नहीं। भगवान की इच्छा है कि आप संसार में जब तक जीना है इसमें जीत के रहो, तो इस स्टाइल मेंटेन करना तो नहीं। तो इसलिए बोलते तुम्हारा इच्छा रे मोर इंद्रिय चालना, मेरा इंद्रिय तो आपके इच्छा अनुसार चलता है, मेरे इच्छा अनुसार नहीं चलेगा। तो इसलिए हम अपने इंद्रिय पूर्ति के लिए ये सब स्टाइल मेंटेन कर नहीं सकते। भगवान की सेवा में शरीर लगना है तो ये शरीर को मेंटेन करना है, आवश्यकता है शरीर को मेंटेन करना। यद्यपि हम शरीर नहीं है, हम शरीर के अंदर शरीर ही है, लेकिन फिर भी शरीर के द्वारा तो सेवा करेंगे, तो इसलिए उसको मेंटेन करना ही पड़ेगा। तो इसलिए मेंटेन करता हूँ क्योंकि इसके द्वारा काम होगा, इसलिए मेंटेन करता हूँ, ना कि सबको चाहिए, नहीं ये नहीं। इस प्रकार से तो इस प्रकार के भाव में अगर हम लोग रहें घर संसार में तो फिर बंधन हो ही नहीं सकता। जो बड़े बड़े हिमालय आदि में और कहाँ कहाँ जंगल में जा करके जटाजुट धारण करके बड़े ध्यान समाधि आदि करते हैं, उनसे भी कई गुना उच्च स्तर में आप हो जाएंगे। अगर संसार में रह करके घर गृहस्थी में इसी भावना में रहेंगे तो उनसे कई गुना ज्यादा अच्छा, कई गुना अच्छा। क्योंकि जो आपने बचाव के लिए छोड़ के चले गए और जाकर के कहाँ हिमालय के चुटिया में कहीं रहते हैं और आपने खूब साध्य साधन करते रहते हैं, मैं कैसे बच जाऊं इस बार, अरे तू बच जाए, तू बचना से क्या होगा, इतने सारे लोग दुखे भोगते हैं। एक छोटे से उदाहरण में समझ सकते हैं अपने, जैसे एक पिता का पांच बेटे थे, सब साथ में खेलते घूमते थे। तो एक दिन उनका घर में कुछ उत्सव था, तो पिताजी ने बोला देखो बेटे, ओ ठीक 12 बजे फिस्ट होगा, अनुष्ठान हो रहा है, आप सब टाइम पर आ जाना, जो भी खेलने जा रहे कहें आ जाना 12 बजे टाइम। हाँ पापा आ जाएंगे, सब बच्चे थे चले गए सब खेलने के लिए। अब खेलते खेलते जब खेल में लग जाते हैं बच्चों तो भूल जाते हैं, भूल गए, याद नहीं रहा कि टाइम का। तो 12 बच्चों का था, तो एक लड़का था जिनको याद है पापा बोल रहा था 12 बजे जाने के लिए लंच आवर, तो उन्हें घड़ी देखा 12 बज रहा है, तो चुप से उठ करके चल पड़ा घर के ओर। बोला पिता मुझे बोलेगा शाबाश बेटा, तूने बात माना, आ गया। बाकी लड़के खेल रहे हैं, उनको बताया भी नहीं, चुपचाप अकेले उठ भाग गया। पिता देखा रहे, और बाकी एक लड़का याद आ रहे पापा बोल रहे थे जाने के लिए 12 बजे, लेकिन वो भाई तो चला गया, हमको बताया नहीं। तो उन्होंने बाकी चारों को बुलाया, बोला रहे चलो चलो पापा बोल रहे थे याद नहीं क्या, चलो सबको बुला कर इकट्ठा करके लेकर आया, भले 5 मिनट बाद में 10 मिनट बाद में आया। अभी आप बताएं, आप अगर पिताजी होते कौन से लड़के पर प्रसन्न होंगे ज्यादा,
जो सबको लेके आया ना उसके ऊपर
होने ना, और जो अकेला भाग गया तो उसको होंगे नहीं। यही जो केवल आपने के चक्कर में जा करके हिमालय की छुट्टी में बैठते हैं उसको भगवान जो परमपिता वो भी घुस नहीं, बोले तुम क्या, ये सारे तो है ना, ये भी सब मेरा ही है, तुम भी मेरे हो, वो भी मेरे हैं, तो आपने स्वार्थ के लिए भाग गया। अगर तुझे कुछ समझ में आया सबको बताता, ऐसा क्यों किया। तो इसी भावना को रह करके घर में रहना बहुत ही उच्च कोटि के संत प्रकृति है, प्रकृति ऐसा नहीं कि केवल जो जाकर को करते नहीं। तो भगवान कहते हैं भगवत गीता में, मुझे लाकर गीता रख दिया गया, सुबह भागवत महाता शाम को गीता है, और गीता में भी क्या पढ़ेंगे कोई पता तो है नहीं। तो भगवत गीता में एक श्लोक भगवान कहते हैं, जत जदा चरति श्रेष्ठ तत्तत एव इतरो जनाः साचत प्रमाणं कुरुते लोकोस्तत अनुवर्तते। इस श्लोक आप सुने होंगे, बड़े होंगे, चौथा अध्याय में है कि भगवान कहते हैं अर्जुन को, जत जदा चरति श्रेष्ठ, समझने के लिए प्रयास कीजिए। भगवान अर्जुन कहते हैं देखो, समाज में हमेशा सभी प्रकार के लोगों को एक मॉडल का आवश्यकता होता है, एक श्रेष्ठ व्यक्ति के खोज में सभी हैं, एक चाहते हैं कोई नेता तो होना चाहिए हम जिनको फॉलो करें, है ना, नहीं हमेशा जिनको देख करके हम अपना जीवन चलावें, जिनके से अनुप्राणित हों, जिनको हम फॉलो करेंगे ऐसा कोई एक उदाहरण, ऐसे कोई मॉडल चाहिए। आजकल तो समाज इतने नीच स्तर को चला गया है, आपने मॉडल ढूंढे, कोई क्रिकेट स्टार हो, कोई फिल्म स्टार हो, कोई कैसे है ना, नहीं जिनका कोई है ही नहीं चरित्र, फिर कुछ नहीं, उन्हीं को मानते हैं। अरे वो ये साबुन लगा तो हम भी वही साबुन लगाएंगे, वो ये शेविंग क्रीम खरीदते हम भी वही शेविंग क्रीम लगा, अरे ये कोई इसी को मॉडल लेकर चलते नहीं, क्योंकि ये मनुष्य मात्र में भावना है। हमेशा मनुष्य किसी भी श्रेष्ठ को देखना चाहता है, रोज ऐसे करता है मैं ऐसा करूं, अगर को पूछे नो नो नहीं ऐसा कर रहे, ये इतने बड़े आदमी है, ओ फिर सफाई देंगे, हमें सभी का मन में। तो इसलिए भगवान जो सृष्टि करता है ये भी कहते हैं कि देखो समाज मनुष्य मात्र के एक हेड, कोई श्रेष्ठ व्यक्ति हमेशा चाहते हैं कोई जिनके हिसाब से चले, तो इसलिए श्रेष्ठ समाज में होना आवश्यकता है। कोई व्यक्ति को श्रेष्ठ के रोल निभाना पड़ेगा, वादा करना पड़ेगा, श्रेष्ठ होना पड़ेगा। श्रेष्ठ किस प्रकार होंगे ना, श्रेष्ठ इसी प्रकार हो जो हम लंबा चौड़ा मोटे तगड़ा है, मेरा वेट ज्यादा है इसीलिए श्रेष्ठ नहीं। श्रेष्ठ का चुनाव किसी हिसाब से होना चाहिए, आजकल इलेक्शन कर दो ही श्रेष्ठ हो गए, बोले नहीं, श्रेष्ठता के चुनाव भगवान स्वयं बता रहे हैं। ओ मालिक है, उन्होंने बताते मैं रूल दिया हूं श्रेष्ठ होना चाहिए, श्रेष्ठ का चुनाव किसके आधार पर होना चाहिए, करेक्ट, जज जदा आचरति श्रेष्ठ, उनका आचरण के अनुसार उनका चुनाव होना चाहिए, उनका आचरण कैसा है। अर्जुन ने जब स्थित प्रज्ञा के बाद भगवान ने अर्जुन को समझा रहे थे, जो स्थित प्रज्ञा होते हैं बहुत उच्च कोटि के सिद्ध महात्मा होते हैं, उनके बाद जब भगवान ने बताया, अर्जुन ने पूछा, बोले प्रभु मुझे ये तो बताओ सिद्ध मत, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, स्थितधिम किम प्रभासते किमासित व्रजेत किम, वो बैठते कैसे, बोलते कैसे, चलते कैसे, ये सब तो मुझे बताओ, लक्षण पता चले मुझे, महापुरुष लोग होते कैसे, कैसे बैठते उठते खाते पीते चलते फिरते बोलते, ये सब जानना पड़ेगा महापुरुषों को, तब तो हम इसे कर सकते हैं, साधारण जीवन में कैसे रहते हैं उनका रहन सहन ये जानना पड़ेगा। उनका रहन सहन जो श्रेष्ठ व्यक्ति होंगे, उनके आचरण, उनके बोली, उनके बैठना उठना बोलना चलना व्यवहार सब किस प्रकार होगा, करे शास्त्र के आधार पर होना चाहिए, अपने मन के आधार पर नहीं, अपने सनक के आधार पर नहीं, शास्त्र के आधार पर होना चाहिए, तब उनको माना जाएगा श्रेष्ठ। तब उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत कर, सजत प्रमाणम कुरुते, वो ऐसे प्रमाण छोड़ जाएगा कि लोग बोलेंगे अरे उन्होंने ऐसा किए थे, अच्छा तब तो कर सकते, क्योंकि प्रमाण रह जाते, इतिहास रह जाता है उन्होंने ऐसा किए थे। जैसे मैंने आज सुबह बोल रहा था राजा रणजीत सिंह का व्यवहार कैसा था, धारण प्रस्तुत कर गए, आज से जो बड़े व्यक्ति होंगे बोले अरे वो ऐसे किए थे, कितने महान पुरुष हैं, कितनी बड़ी बात है। तो ऐसे ऐसे एक आचरण करते हैं जो इतिहास साखी रह जाता है, हाँ हाँ मानना पड़ेगा ऐसे आचरण था, तो इसी को सब अनुसरण करेंगे, वो आचरण शास्त्र के आधार पर होना चाहिए, शास्त्र आधार। तो सबसे पहले श्रेष्ठ व्यक्ति को शास्त्र को समझना पड़ेगा, शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर उन्हीं के हिसाब से अपने जीवन को चलाना पड़ेगा, तभी श्रेष्ठ बन सकते हैं। इलेक्शन से जीत करके श्रेष्ठ नहीं हो सकते, धन दौलत शक्ति साधन पर नहीं, केवल शास्त्र अनुसार आचरण के द्वारा, शास्त्रानुवर्तित आचरण के द्वारा ही कोई श्रेष्ठ हो सकता है। कोई उच्च आसन में, बहुत उच्च में जाकर बैठ जाने से कोई बड़ा आदमी नहीं बनता, बड़ा आदमी बनता है अपने गुण से, हाई पोस्ट पोजीशन में नहीं, पोस्ट पोजीशन से बड़ा नहीं बनते, बड़ा आदमी बनते हैं। एक राजा थे, बड़े प्रख्यात राजा थे, राजाओं के पास में तो कई प्रकार के लोग रहते हैं, काम करते हैं, तो एक चतुर आदमी रहते थे, तो उनके साथ जब राजा का वार्तालाप होता था, वो राजा हमेशा डिफीट हो जाता था उनके साथ में। तो राजा का मन में हमेशा रहता था, जैसे आप अकबर बीरबल सुने होंगे ना, हाँ ऐसे चतुर थे, ऐसे मान लो बीरबल की मान लो, अकबर वो सम्राट थे, लेकिन अब जो कोई बात उठे बीरबल ऐसे बात कहेंगे, राजा डिफीट हो जाता था, हार जाता था। राजा का हमेशा था, तो उनको एक बार तो हरा कर देखो, एक बार तो उनको डिफीट कराऊं। तो सोच रहे थे एक दिन अकबर जहां पनाने कहीं गश्त में जा रहे थे, बीरबल तो साथ में चलते हैं उनका, उनके सेक्रेटरी, तो अकबर हाथी में बैठे थे, रॉयल एलिफेंट, राज के हाथी पर बैठे थे। बीरबल तो भाई है नो, तो नीचे चल रहा था पैदल में। तो जब जा रहे थे रास्ता में, अकबर ने बीरबल की, बीरबल जी हाँ जहां पना हजूर बताइए, हाँ अभी है ना, ना क्या ना, देखो मैं कितना ऊपर हाथी के ऊपर बैठा हूँ, राज के हाथी पर नजर बैठा हूँ, और आप तो नीचे चल रहे हैं, तो आज तो पता चलता ना कौन कैसे कितने बड़े हैं आप, हमसे अपने को होशियार समझते थे, बड़ा समझते थे ना, जहाँ पना हजूर आप ऊपर हैं, लेकिन जहाँ पना बुरा ना माने, क्या बुरा मानो, क्या कहना चाहते हैं, मैं तो है ही हूँ ना, जहाँ पना जब निकती होता, निकती समझते ना, तराजू होता ना, जो पल्ला ऊपर चला जाता ना वो तो आप समझ रहे हैं, और जो नीचे हो जाता समझ रहे हैं ना, यही है, मैं तो नीचे हूँ आप ऊपर ही है। अरे बाप रे बाप, तराजू में जो पल्ला ऊपर, समझ रहे ना, अरे कुछ नहीं इसका मूल्य, वजन ही नहीं है, वेटलेस है, और ये भारी है तो नीचे, बोला हम तो भारी, हम कहाँ ऊपर जा पाएंगे, हम ऊपर उठा नहीं सकते कोई, आपका तो कोई है ही नहीं ऊपर उठ, हम तो नीचे रहेंगे। अरे अकबर तो निरुत्तर हो गए, नहीं तो बसा दिया मुझे किसी प्रकार से युक्ति करता था, लेकिन जो उनका पास बुद्धि है विवेक है उनको कैसे। एक दिन अकबर अपने सपत्निक, अपने पत्नी के साथ चले, अब जा करके बीरबल भी साथ जाते थे, वो हमेशा दोनों पति पत्नी विचार कर रहे थे कैसे बीरबल को मजा सिखाएंगे, क्या करेंगे, कोई उपाय से उनको पार नहीं पाते हैं। तो गर्मी का सीजन था, आम मिलता था पक्का हुआ आम, तो आए बोले बीरबल आम खाने की इच्छा, हाँ हाँ आपकी इच्छा होता है, अभी डर करते हैं तो उसे थे अंगरखी, बोले महाराज के लिए बड़ी सुंदर, आप कौन सा आम खाते हैं, रत्नगिरी वाले, रत्नगिरी आम लेकर आओ, अरे आ गए, और तीन बास्केट आम ले आए, और चुने हुए बहुत सुंदर सुंदर आम। अब तीनों राजा साहेब, रानी साहेबा और बीरबल बैठे, तीनों बैठ करके आम खोलकर खाने लगे, इतने सुंदर आम था पका हुआ, खाने लगे, और वो दोनों राजा रानी अपने बात किए थे बीरबल को किसी फंसाने के लिए, वो खा करके चूसते थे आम, खा करके रस और उसका गुठली और छिलका बीरबल के सामने रखते थे, बातचीत चल रहा था, बीरबल क्यों मार करेंगे, राजा साहब आम खाते हैं बैठ करके, बड़े बहुत स्वादिष्ट आम था, खा रहे थे, वो दोनों तो पहले प्लानिंग किए थे, खा करके जो छिलका गुठली सीधा बीरबल के जाए, बीरबल तो अपना डाल ही रहे थे, बातचीत चला था, ध्यान नहीं था। आप जब खा लिए पूरे पेट भर के सारा आम खा लिए, खा के अकबर बोलते हैं कि बीरबल, हाँ जी हजूर क्या, अरे आप इतने पटु है, हाँ अभी आम खाई, एक भी छिलका हमारे सामने नहीं, तो सारे इतना खा गए आपने, इतना आम सारा गया, कितने पटु है आपने, समझ रहे ना क्या बोलना चाहते, अरे इतना खा गया हम तो एक खा रहे, इतनी एक झुड़ी छिलका गुठली आपका सामने, हमारे पास तो अभी है ही नहीं। बीरबल बोले जहां पना बुरा ना माने, सही बात तो सही है, कम से कम पेटू कौन है उतना, किसे ना, मैं तो कम से कम छिलका गुठली फेंकता हूँ, आप तो भी नहीं फेंकते साथ में तो खाना शुरू तो किए थे, लेकिन अब मैं तो खाया इतना डाला हूं, लेकिन आप उसको भी खा जाते, अब कौन किसका तो इस प्रकार जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं तो उनका हर एक चीज में श्रेष्ठता दिखाई पड़ेगा, वो बिल्कुल नीति के आधार पर, शास्त्र के आधार पर, इस प्रकार के उनके सारे आचरण होगा। तो इसलिए श्रेष्ठ बनने के लिए सबसे पहले शास्त्र अध्ययन करे, शास्त्र को समझे और इसके ऊपर आचरण करे, तब जा करके श्रेष्ठ बन सकते हैं। तो ये श्रेष्ठ होना आवश्यकता है, और भगवान ये कह करके समझाते हैं भगवद गीता में कि जो जो भगवद गीता पढ़ते हैं आपको सभी का उत्तरदायित्व क्या है, श्रेष्ठ बनने के लिए प्रयास करो। कम से कम श्रेष्ठ बनने के लिए प्रयास करो। कुछ तो इस गीता में सब नियम बताए गए, उसको समझ करके इस हिसाब से चलो, ताकि आपको देख करके आपके परिवार वर्ग गांव में कई लोग जो अनपढ़ गवार जो भी कोई लोग तो आप देखेंगे नहीं, वो प्रभु जी ऐसे करते हैं, वो दादाजी ऐसे करते थे, वो तो बहुत समझदार हैं। लेकिन आप ऐसे खराब बंद काम करेंगे तो उन लोगों को क्या सीखें, क्या संस्कार पड़ेगा उनके ऊपर, है ना? फड़े ना परिचय थे, कहते हैं कि जिनके बच्चे जैसे हैं इतने बदमाश से बोली, तो इससे पता चल जाएगा उनके घर में माँ बाप भी किस प्रकार बातचीत करते हैं, इससे पता चलता है, इसी को देख करके फले ना परिचय थे, इससे पता चलता है उनके आचरण ऐसे। चाणक्य जी कहते हैं अपने नीति शास्त्र में, कहते हैं कि कोई लड़का अगर अश्लील हो, अश्लील सुनते हैं कि किसको अश्लील कहते हैं, अश्लीलता असभ्य बर्बर, जिनका आचरण बिल्कुल खराब है, कंडम है, इसको अश्लील कहते हैं। और उसके उल्टा होते शील स्वभाव, बड़े शांत स्वभाव, भद्र है। जो जो अश्लीलता कोई लड़के में इस प्रकार बदमाशीपन बहुत क्या कहते हैं अभद्रता असभ्यता आ गया, तो उसके दोष किसका जानते हैं, किसको दोष देंगे? माता पिता को नहीं है, केवल माता को। माता जी लोग बैठे हैं, बुरा ना मानना, जो नीति वाक्य हूं मैं बताता हूं। चाणक्य का कहना है अश्लीलता मातृ दोषेण, माँ का दोष है। सर मान लोग बोले क्यों हम क्यों क्यों बोलते हैं, हमारा क्या दोष है भाई, बच्चा बिगड़ गया हमारा क्या है? तो चाणक्य जी कहते हैं कि जननी जन्म नाम गुरु, जो माँ है वो असली जन्मजात गुरु है। बोले बाप क्या गुरु, बाप सेकंड हैंड है। बोले कैसे? बोले बाप को तो बच्चा पहचान भी नहीं सकता। अगर माँ नहीं बताएगा बेटा ये तेरा बाप है तो उनको बाप मानेगा, अगर बोल देगा ये तेरे चाचा है चाचा ही बोलेगा, जो बोलेगा। क्योंकि इसीलिए आज भी केवल भारतवर्ष नहीं, किसी भी राज्य में जाओ, किसी भी देश में जाओ, जो अपना देश की भाषा को क्या बोलते हैं, मातृभाषा को, पितृभाषा भातृभाषा नहीं बोलते हैं, मदर टंग मदर लैंग्वेज, क्योंकि माँ से सीखे हैं। माँ जो बता देगा पिता बोल पिता ही बोलेगा, पापा बोल पापा बोलेगा, डैड बोल डैड बोलेगा, जो भाषा सिखाएगा वही सीखेंगे वही बोलेगा। इसलिए जो भी कुछ बच्चा बोलता है वो बोली किससे सीखता है, माँ से सीखता है, इसलिए मातृभाषा कहते हैं उसको, वो जो सिखा देता है। तो उसी से बोलना संस्कार भद्रता असभ्यता ये सभ्यता उसी से आता है। इसलिए अगर संतान अश्लील हो गया तो उनका पूरा पूरा दायित्व है माँ का, उनके सही नहीं से उनके भाषा सही सिखाने की, अश्लीलता मातृ दोष है। तो पिता का क्या दोष है? मूर्खता पितृ दोषेण, अगर बच्चा मूर्ख बना तो बच्चा का दोष नहीं है, किसका है? पिता का, उनका दोष है। संतान अगर मूर्ख हुआ तो पिता का दोष है। बोले लड़का का कोई दोष नहीं, बोले उनका भी है, क्या उनका दोष क्या है? दरिद्रता स्वदोषेण, अगर वो गरीब दरिद्र बना बोलते ये तो उनका ही दोष है, उसने माता पिता का कोई नहीं, संसार किसी का दोष नहीं, उनका दोष है। इसी के लिए पुत्र के लिए धन संपत्ति रखना कोई आवश्यकता नहीं। बोले अगर टेररिस्ट बना और ये सब खत्म कर उगाड़ दे, तुम जो रखा है सब क्या क्या खर्च क्या करेगा, वो जब बेकार हो गया तो धन किस लिए रखा, सब ऐसी पाप कर्म में लगाएगा। लेकिन अगर वो सभ्य बना नीतिवान बना तो वही खुद उठ जाएगा, तुम क्या देगा तेरे पैसे, क्या मतलब उसको। पुत्र अगर सपूत बने अच्छा बने तो आपका धन नहीं चाहिए, अगर कुपुत बने तो भी बिगाड़ देगा सर किस लिए। तो इसलिए उनको संस्कार देना आवश्यकता है, यही शिक्षा संस्कार, ये शिक्षा संस्कार के दोनों दायित्व है, पिता को माता के, ये हमारे कर्तव्य है। और हम पिता माता को पता नहीं संस्कार क्या हो कैसे देंगे, इसलिए शास्त्र पढ़ना आवश्यक है। इसलिए शास्त्र रोज शास्त्र ऐसा नहीं करे, शास्त्र हमेशा है। जैसे बाजार से कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदेंगे वो प्रोडक्ट के साथ में एक पेपर आता है छोटा सा, मैनुअल, यूजर मैनुअल, यूजर गाइड आता ना, डब्बा कोई बोतल में 7 महीने का आता है, क्यों आता है? वो जब से मैन्युफैक्चर उसी समय वो भी प्रिंट आउट आता है उसके साथ, क्योंकि उसको कैसे सेवन करना है, कैसे उपयोग करना है, उसमें विधि लिखा है, उसको पढ़ो, लिखा पढ़ करके इसी हिसाब से यूज करो। गड़बड़ करेंगे तो हम पहले देते दिखाने के, है ना, ये दो सपना। तो ये जो पुस्तक है ये कोई हम लोग नहीं बनाए, ये पुस्तक सीधा भगवान ने बनाए, उनके कृत्य वो दिए हैं। ये मनुष्य जीवन जब संसार बनाए, इस संसार में मनुष्य को बनाए, तो संसार क्या है, मनुष्य क्या है, कैसे रहना, कैसे व्यवहार, इसलिए यूजर गाइड मैनुअल बनाकर तभी दिए थे, तभी से दिए, उसके साथ में एक साथ में प्रोड्यूस हुआ, कुछ बात में नहीं, एक साथ में हो भी आया संसार और शास्त्र। तो हमारा कर्तव्य है उसको समझे पढ़े, फिर इसके हिसाब से उपयोग करे अपने जीवन को। और उसको पढ़े ही नहीं अभी तक, कई लोग तो ले करके प्रभु जी गीता लीजिए बहुत अच्छा पढ़ी है 1987 में लिया था, अभी भी पढ़ा है। कहाँ पढ़ा ना, वो लाल कपड़ा उसमें चढ़ा दिया हूँ, अभी रखा है घर में, अभी तक खोला नहीं है। हिंदू धर्म में इतने खातिर करते हैं शास्त्र को, बिल्कुल लाल कपड़ा में बढ़वा करके चंदन तुलसी लगा करके मथा टेकते हैं, उसको खोलेंगे नहीं, लेकिन जथावत आज इट इज रखा रहता है। हाँ आज इट इज जथारो नहीं चाहिए। तो इस प्रकार नहीं, कम से कम जो गाइड है उसको इसी प्रकार से हमारा कर्तव्य है कि उसको जाने बिना जिएंगे कैसे, आचरण क्या करेंगे, कैसे पता चलेगा क्या आचरण, तो इसलिए आधार है, इसके आधार पर हम लोग को जान करके इसी आधार पर हमारा व्यवहार बातचीत बैठना उठना सब सुधारना चाहिए। इसलिए जब जब आचरति श्रेष्ठा, इस श्रेष्ठ बन करके आपने आचरण के द्वारा अब ऐसे प्रमाण प्रस्तुत करेंगे, सजत प्रमाणं कुरुते, ऐसे प्रमाण सृष्टि करेंगे, ऐसे रिकॉर्ड रख जाएंगे कि लोकस्तत अनुवर्तते, सारे लोग में बोलेंगे हो उन्होंने किए थे, हम ऐसे करेंगे, उन्होंने ऐसे किए थे। इस संसार में बहुत जल्दी आपके इसी स्टेट के एक व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत जल्दी अपने जीवन में महात्मा बन गए, जानते ना है? महात्मा गांधी, महात्मा भी बोलते ना, उनका नाम महात्मा थोड़ी था, उनका था मोहनदास नाम था, जानते ना नहीं, मोहनदास करमचांद, यस। लेकिन आजकल मोहनदास करमचांद कोई नहीं बोलते, क्या बोलते, महात्मा। और आप लोग तो बापू जी बोलते, बापू साधु को बापू बोलते ना, वो तो बापू बापू जी। अरे ये तो एक लायर थे, विदेश में जाकर लॉ पढ़े थे, बापू कैसे बन गए, महात्मा कैसे बन गए, ग्रेजुएशन कंप्लीट करके LLB किए थे जाकर UK में, है ना नहीं? लेकिन कुछ ही समय के लिए उन्होंने ऐसा कुछ आचरण किए, ऐसा कुछ नियम लिए जिनके कारण कुछ ही समय में पूरे संसार में लोग उनको महात्मा बोलने लगे। देखिए महात्माओं के जन्म से नहीं बनकर आए, आपने आचरण से बने महात्मा, आपकी तरह इसी लिखा पड़ा थे, लेकिन नहीं। जब उन्होंने आपको पता है उनको एक बार उनका महात्मा बनने का उनके पीछे जो हिस्ट्री है वो दक्षिण अफ्रीका से शुरू हुआ था। उन्होंने जो लॉ कंप्लीट किए थे उसके बाद में उनको पहले केस मिला था अफ्रीका में, प्रिटोरिया, दरबान टू प्रिटोरिया, प्रिटोरिया में उनका केस था। वहाँ पे काले और गोरियों का बड़े झगड़ा चल रहा था, तो काले लोगों को कृतदास, मनुष्य को खरीद करके अपना घर में जैसे कुत्ता आकर रखते ना, गाय भैंस ऐसे भैंस बैल की तरह मनुष्य को खरीद करके घर में रख करके गोली मार देंगे, पीटेंगे, चाबुक पीट पीट कर काम करा रहे थे, खेती कराना मनुष्य से, हल चलाना, गाड़ी चलाना, ऐसे करते थे बेचारे। वो बेचारे क्या करेंगे, वो ऐसे करके खरीद के ला कर तो इस प्रकार से तो उन लोग को थोड़े थोड़े पढ़ लिख कर से बोले हमारे पर इतने अत्याचार कर रहे हैं, तो उनके तरफ से केस लड़ने के लिए उनको दिया था, उन्होंने कंटैक्ट किए थे तो उन्होंने जा रहे थे उनके लड़ने के। तो दरबान से उतर करके वो ट्रेन से प्रिटोरिया जाना चाहते थे दरबान से, हमें गया था दरबान स्टेशन में देखा उनके स्टैचू बना हुआ है। तो उन्होंने उनके जो महकिल जो पार्टी के लोग थे उनके लिए फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में टिकट रिजर्वेशन खरीदे थे फर्स्ट क्लास में, तो उन्होंने फर्स्ट क्लास टिकट उनका रिजर्वेशन था कन्फर्म, और उन्हें जाकर ट्रेन में फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में बैठे गाड़ी छूटने से पहले अपने हिसाब से बैठे थे। गाड़ी छूटने का समय होता रहा था तो एक गोरे आदमी आया साहब गोरे आदमी का, तो देखा बोला ये तो इंडियन बैठा, ये तो गोरे नहीं हमारे तरह, जैसे भी काले भी नहीं गोरे भी नहीं, बीच वाला है मीडियम है। तो बोला आप इधर कैसे निकलो, तो गांधी जी ने दिखाए अपने टिकट, बोले मेरा कन्फर्म से टिकट, ये मेरा टिकट रिजर्व मेरा है ये, बोले टिकट को उनका हाथ से खींच कर लेके फाड़ के फेंक दिया। बोले टिकट क्यों खरीदा आपने, फर्स्ट क्लास टिकट क्यों खरीदा आपने, बोले क्यों तो नोटिस बोर्ड में तो लिखा नहीं था कि फर्स्ट क्लास टिकट, नहीं आप पता नहीं ये केवल हम लोग के लिए गोरे के लिए है, यहाँ बाकी काले और मीडियम वो नहीं आ सकते। बोले ऐसा तो कोई नोटिस में लिखा नहीं था, टिकट जब मैं रिजर्वेशन किया तब तो मुझको मना नहीं किया, तो कोई भी पेमेंट करेगा रिजर्वेशन कर सकता ना, आपने किया क्यों पेमेंट, ये गलत है। और उनको तो बोला कि वो बोले वो लॉयर है भाई, वो आइन की बात, बोले किस आइन पर, किस मैं लॉयर हूँ बड़ा ना लॉयर हो तो कुछ नहीं, यहाँ लॉ फॉ कुछ नहीं चलेगा, गेट आउट। तो बोले मैं नहीं जाऊँगा, तो टिकट कैसे फाड़ दिया, टिकट फाड़ दिया, जाओ निकलो, निकले तो उनका जो बैगेज था उसको निकाल करके फेंक दिया गाड़ी से और उनको धक्का देकर निकाल दिया। वो सीधे गए स्टेशन मास्टर के साथ कंप्लेन कर लिया, स्टेशन मास्टर बोला गलती तुम्हारा है, तुम क्यों टिकट खरीदा फर्स्ट क्लास क्यों बैठा। गांधी जी बोले अरे तुम भी ऐसा ही, अरे तुम नोटिस क्यों नहीं लिखा था कि वो आप नहीं खरीद सकते करके, मैं खरीद कर रिजर्वेशन में बैठा है बाकायदा, आप लोगों ने मेरे टिकट सेलिंग किए, अब मैं बैठा था मुझे निकाल कर इसलिए निर्यातना कर रहे। और स्टेशन मास्टर बोला नहीं वो तो सही है, तो जबरदस्ती जाकर बैठे थे, मैं फिर जाकर बैठूंगा, माना नहीं तो उनको स्टेशन मास्टर भी साथ दिया, वो आदमी ने धक्का देकर पुलिस को पकड़ा, पुलिस आया उनका जो कपड़ा वपड़ा पहने थे सारे निकाल करके नंगे करके छोड़ दिया। पूरे सारे रात दक्षिण अफ्रीका में इतनी ठंडी था, पूरे स्टेशन के प्लेटफॉर्म थर 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 टिटूर रहे थे, कोई नहीं पूछे उनको, उनके सामान को फेंक दिया गया, कपड़ा फाड़ दिया गया, ऐसे कर दिए गए, इस निर्यातना करके सारे रात जो ठिठुर रहे थे तब सोच रहे थे देखो ये गोरे लोग कैसे अत्याचार कर रहे हैं, मैं तो अकेले हूँ, मुझे इस प्रकार ऐसे करते हैं कि इस प्रकार अन्याय मेरे साथ करते हैं, और मेरे देश में तो पूरे उनके चक्कर में पड़े, ये लोग कैसे दुख पाते हैं। तो उसी रात ये ऐतिहासिक भावना उनके मन में दिया, उसी रात सूर्य रात जो कांपते कांपते थर उठ गए, दूसरे दिन सुबह बोले यहाँ कुछ नहीं चलेगा, आए वापस आकर के लेकर और मित्र से मिल करके वापस आए भारत में, बोले उनके साथ जबरदस्ती काम नहीं चलेगा, नहीं कर सकता उसे, तो क्या करेंगे अहिंसा आंदोलन, हिंसा नहीं करूंगा, उनके विरोध करूंगा लेकिन उनको कुछ बोलूंगा नहीं, वो आकर मारेंगे एक थप्पड़ मैं और एक थप्पड़ मारू, मैं उनके बदले नहीं मारूंगा, वो गाली आ देंगे प्रत्युत्तर नहीं दूंगा। तो ये आंदोलन किए गुजरात में, शायद इसी रेव के लवण सत्याग्रह जानते हैं, नमक के लिए हाँ गांधी यात्रा, और नमक वो यहीं से नमक बना करके ले जाएंगे, वहां जाकर प्यूरिफाई करके वो चार गुना रेट में यहाँ कर बेचेंगे, हम लोग हमारी नमक हम क्यों बेचेंगे। तो गांधी बोले नहीं उनके सामान हम कुछ खरीदेंगे नहीं, हम लोग अपना बनाएंगे, कपड़ा अपना बनाएंगे, नमक अपना बनाएंगे, उनके नहीं लेंगे तो उनका व्यापार नहीं चलेगा तो मर जाएंगे। तो आपने जो सत्याग्रह लवण का कर रहे थे तो देखे कि उनके पीछे तो हजारों लोग आ गए, अपना अपना नमक बनाकर वो खाएंगे, हम ये विदेशी नमक खाएंगे नहीं। तो ब्रिटिशर्स पुलिस आकर के उनको मारे पीठे नीचे गिर गए थे गांधी जी, उनके ऊपर बूट पहन करके उनके छाती के ऊपर कुचलते रहे, इतने निर्यातन। तो उनके पीछे कई हजारों लोग खड़े थे भारतीय लोग, वो इतने गुस्से में कर रहे थे, खाली इशारा कर दे उनको टुकड़ा टुकड़ा कर देते उनको, लेकिन गांधी जी तब भी बोले थे नहीं कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं मत करो, कुछ मत करो। वो इतने कष्ट दिए, इतने उनको तकलीफ दिए, फिर भी मत दम तो बोले नहीं कुछ मत करो, ये मेरा व्रत है, अहिंसा व्रत है। तो अंत में जो उनके जो कैप्टन था वो जाकर बोला बेडिंग बांधो चलना है हम लोग। बोले क्यों? बोले ये आदमी तो हमको भगा देगा। बोले क्यों? बोला हमको इतने तंग किए, इतने कष्ट दिए, इतने कष्ट दिए, वो कुछ बोलता भी नहीं। वो अगर वो लोगों को थोड़ी इशारा करता हम लोग तो पीस पीस कर टुकड़ा कर दिए होते, इतने लोग थे, लेकिन किसी को नहीं चल रही थी। सब सहन करके रहा, आसन ही नहीं लेता, कुछ सब नहीं करता, कुछ बोला भी नहीं। और वो सहनशीलता इतनी बड़ी शक्ति है, उनके शक्ति के सामने कोई बंधु कोई हमारी कुछ काम नहीं चलेगा। बांधो बड़ी चलना होगा और रख नहीं देगा, इतने सहनशीलता के सामने कोई नहीं टिक सकता। सच में केवल इसी के दम पर उनको निकाल दिए, केवल सहनशीलता निकाल दिए इतने बड़े। और उस यही है एक एक अभ्यास, एक अभ्यास एक गुण को उन्होंने करने लगे। और ऐसे ऐसे गुण को अगर कोई अपनाते हैं शास्त्रीय वचन को, अहिंसा सत्य आस्तेय ये सब जो गुण बता गया, इस गुण को जब हम अपनाएंगे तो कैसे नहीं बन पाए। तो इस प्रकार शास्त्रीय गुण को समझ करके पढ़ करके अगर हम उसको स्वयं आचरण करेंगे तो हम खुद श्रेष्ठ बनेंगे। और श्रेष्ठ बन करके समाज को सिखा दिया जाएगा इसी के माध्यम से। सजत प्रमाणं कृते लोकस्तत अनुवर्त, सारे साधारण लोग एक ही महान व्यक्ति के आदर्श को देख करके अनुप्राणित होते हैं, उसके आदर्श पर चलते हैं, उसी के आदर्श पर चलते हैं, वही उनके स्वभाव है, वही स्वभाव है उनके। तो इसी स्वभाव को आजकल जैसे दुर्व्यवहार किया जाता है, गलत रास्कल मॉडल दिखा करके उनको कंडम किया जाता, बेचारे खराब चीज देखे तो खराब करेंगे, रहन सहन बातचीत बहन सब अभ्यास खराब ही होगा, क्योंकि जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं वो सब इसी प्रकार है, तो इसी तो सीखेंगे और क्या करेंगे। तो समाज में श्रेष्ठ ही कोई ना रहते, अभी रहे नहीं, तो इसीलिए भगवान ने सृष्टि समाज बनाते समय में ये चतुर्वर्णं मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह, गुण और कर्म के अनुसार चार वर्ण और चार आश्रम भगवान ने बना कर गए थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये भगवत की भगवान की योजना है, ये बनाए थे क्योंकि ये होना आवश्यकता है समाज को एक उन्नति स्तर में आने के लिए। ये चार वर्ग का वर्गीकरण आवश्यकता है, एक वर्ग से तो काम नहीं चलेगा। जैसे हमारा शरीर है, हमारा शरीर एक पूर्णांग शरीर है, ये शरीर में पैर होना चाहिए, हाथ होना चाहिए, पेट होना चाहिए और सर भी होना चाहिए, तब कंप्लीट बॉडी माना जाएगा। अगर कंप्लीट बॉडी में एक पार्ट नहीं है तो कंप्लीट नहीं माना जाएगा, इनकम्प्लीट है। लेकिन ये शरीर के जो अलग अलग अंग है सबका अलग अलग काम है, सभी अंग अपने काम करेंगे दूसरे काम नहीं कर सकते। जैसे पैर है, उनके काम है पूरे शरीर को ढो करके लेकर के चलना। आप यहाँ से उठकर यहाँ तक जाएंगे, हाथ में जाएंगे ना सर में जाएंगे, कौन लेकर जाता है? पांव लेकर जाता है। वो शूद्र है, ऊपर जितने वर्ण है सभी का काम करना शूद्र का काम। एक वर्ग ऐसे होना चाहिए जो उनसे समस्त उच्च वर्ग के लिए काम करे, इसलिए नौकरी करना शूद्र का काम है, और किसी का काम नहीं, वो दूसरे के लिए जा काम करे। वो पैर है, उनके ऊपर और एक वर्ग होना चाहिए जो पेट है, वो क्या करता है? कुछ काम दाम नहीं करता, बैठ करके सारे का कमाई सेंट्रलाइज खुद लेता है, पचा करके फिर सबको सप्लाई देता है। ये वैसे व्यापार वाणिज्य है, लेना ले करके उसको फिर बना प्रोसेसिंग कर फिर बाजार में छोड़ना, फिर गोडाउन मेंटेन कर सप्लाई देना सब, ये वैश्यों का काम है। तो ये पेट का काम करता है, शूद्र उनको पैर उनको लेकर जाता है, लेकिन वो सप्लाई देता है पेट को भी, सारे अंगों को पेट से तो जाता है, है सब। हाँ सब प्रकार से वही तो देता है। तो उसके ऊपर में हाथ है, हाथ अपना काम करेगा, कोई शत्रु आया कौन उठाता है रोकने के लिए? उनको हाथ ही उठता है, क्षत्रिय है, क्षेत्रीय प्रोटेक्शन उनका काम है, नियम कानून लिखा पढ़ी एप्लीकेशन सब हाथ ही करेगा, मारपीट हाथ ही करेगा, रुग्ण हाथ सब करेगा, वो क्षेत्रीय है अपना काम करेगा। तो क्षेत्रीय वर्ग है उसके ऊपर में, और उसके ऊपर में ये सर है, वो कुछ नहीं करता, ना काम करता ना करता, कुछ खाता, कुछ चुपचाप बैठा रहता है, चुपचाप बैठा रहता है, लेकिन सारे दिशा निर्देश कहता है ऐसा करना ठीक नहीं, ऐसा करो, इधर जाओ, ये करो, बैठे बैठे सब कुछ करता रहता है। ये है ब्राह्मण वर्ग, उनके काम है कुछ काम दाम नहीं करेंगे लेकिन पूरे समाज को दिशा निर्देश करेंगे, बताएंगे। लेकिन आप बोलेंगे बेकार है, आलसी निकम्मा, कहीं के कुछ करता नहीं, बैठा रहता है, उसे क्या खाता है? बोले खाता है, उनको खिलाने दो, उसे कुछ बोलो नहीं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण, क्या महत्वपूर्ण, कुछ करता रहता है नहीं। आजकल समाज में लोग ऐसे करते हैं, ब्राह्मण क्या कुछ नहीं, उनको नौकरी पकड़ने सब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कोटा में दे दो, उनको बना दो उनको। आजकल तो ब्राह्मण लोग की विचार अवस्था से आकर के वो अपने सर्टिफिकेट चेंज करके शेड्यूल कास्ट बन जाते हैं नौकरी। अरे भाई लेकिन थोड़ा सोचने सोचिए किसका इम्पोर्टेंस कितना है महत्वपूर्ण। अगर हमारा शरीर में दोनों ही पैर कट जाए तो आजकल तो लकड़ी के पैर लगा कर चल लेते हैं, है ना? हाँ, लकड़ी पकड़ लगा दो, नहीं तो हुई चार बैठ जाओ, चल जाता गाड़ी, कोई चलेगा जी जाएंगे। स्टोमाक डिजॉर्डर हो जाए तो प्लास्टिक स्टोमाक भी लगा देते हैं, चल जाता है पेट पे ऑपरेशन करके। हाथ जैसे पैर ऐसे हाथ है, कट कट जाने से हाथ भी दूसरे हाथ लगा दो, नहीं तो ऐसे काम चला लेते। लेकिन ऐसा कभी हो सकता है कि सर कट गया वो प्लास्टिक का सर लगा दे, लकड़ी का कुछ काम चला दे, चलेगा? देखिए बाकी शरीर के प्रत्येक अंग को रिप्लेसमेंट किया जा सकता है, लेकिन ये निकम्मा आलसी के रिप्लेस नहीं हो सकता। वो गया तो तू गया, हाँ? कुछ नहीं करता, सबसे टॉप पोजिशन में बैठा है और इतने पावरफुल है, अगर वो गया तो उसके लिए कुछ रिप्लेसमेंट है नहीं, कोई नहीं सोचेगा भाई, दिमाग खराब हो रहते रहते खराब हो गया तो खराब ही हो गया, फिर तो तू ही खराब हो गया। अगर दिमाग खराब हो गया तो गया कोई काम का ही नहीं है, पागल करके घोषित कर देंगे, कहीं राइट नहीं, कोई बाहर नहीं, कुछ नहीं कर देंगे आपको। अगर वो उड़ गया तो वो भूत बन जाएगा तुम्हें, कितने महत्वपूर्ण है। तो हमारे संस्थापक आचार्य प्रभुपाद जब विदेश में संस्था लेकर बना करके आए भारत में बम्बई से, सारे रिपोर्टर लोग जाकर उनको पूछे, बोले स्वामी जी इतने सारे बड़े बड़े संस्थाएं हैं स्पिरिचुअल मूवमेंट आध्यात्मिक संस्था, आप ये संस्था फिर क्यों बनाए, ये संस्था इसमें चल जाए। पद बोले हाँ संस्था बहुत है, मेरे संस्था के थोड़े स्पेशल करने, मेरे संस्था में मैं कुछ ब्राह्मण बनाना चाहता हूँ। बोले क्यों, क्या जरूरी है ब्राह्मण बनाना, लोग तो शूद्र बनाते हैं, शेड्यूल का शेड्यूल कोटा सिस्टम करके सर्टिफिकेट करते हैं हम। बोले क्योंकि आजकल समाज हेडलेस सोसाइटी है, क्या बोले, हेडलेस, बोले सर्वहीन समाज है, सर है ही नहीं, बाकी सर है, पैर है, पेट है, हाथ है, लेकिन सर नहीं है, सर नहीं है तो क्या माना जाएगा उसको। आप कोई व्यक्ति देखो जिनका सब ठीक ठाक है लेकिन सर ही नहीं है, क्या मानेंगे उसको? अरे पहले डर जाएंगे, भाग कर ये कौन है भाई पहले तो भाग ही जाएंगे, बोले कोई सीबी का गणा आ गया ना क्या, हेडलेस हेड ही नहीं है तो कहीं जाए, है ना? नहीं तो बोलते आजकल समाज ऐसा ही है, जिनका सर ही नहीं है, ब्राह्मणत्व किसके पास नहीं, क्यों ब्राह्मण है ही नहीं, सब बाकी वर्ण से कैसे चलेंगे, क्या दशा होगा, भूत प्रेत की तरह रहते हैं, भूत प्रेत पिशाच है, हेड नहीं। तो इसलिए मैं तालीम देना चाहता हूँ, तालीम सिखा दे करके ट्रेनिंग दे करके कुछ को ब्राह्मण बनाना चाहता हूँ। ब्राह्मण बन जाए तो सर लग जाए तो पूरे शरीर ही सुधर जाए अपने, है ना? नहीं सर वाला आदमी दिमागदार है, ऐसा थोड़ी है, आदमी समझदार आदमी है, कहते ना नहीं और क्या। तो इसलिए पूरा संसार को समझ में आ जाए, लाइन पर आ जाए तो आवश्यकता है कुछ ब्राह्मण की आवश्यकता होना चाहिए। ब्राह्मण ही श्रेष्ठ वर्ग हैं, उच्च वर्ग हैं, हेड है सोसाइटी के। तो इस प्रकार उच्च श्रेष्ठ बनने के लिए हमको क्या बनना पड़ेगा, ब्राह्मण बनना पड़ेगा। अब ब्राह्मण बनने के लिए हाँ सेकंड इंसिशन ले लेंगे, जेन्यू डाल करके एक स्वाहा स्वाहा करके आ जाएंगे, ऐसे ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण शब्द गीता में भगवान कहते हैं ब्राह्मण का विपरीत शब्द है कृपण। क्या है? कृपण। कृपण जैसे होते हैं कि अमीर के विपरीत है गरीब, तो इस प्रकार ब्राह्मण के विपरीत है कृपण। जो ब्राह्मण नहीं है वो कौन है? कृपण है। ब्राह्मण नहीं समझ पाए क्या चीज है ब्राह्मणत्व, तो कैसे होता है। कृपण तो समझते हैं ना, कौन होता है कृपण? किसे बोलते हैं? असली में कंजूस है, कंजूस। कृपण शब्द का अर्थ कृपणता है, कंजूसीता। तो ये भी जो बोलते हैं कंजूसीता है। आपको बहुत बड़े धन दिया गया, भारी संपत्ति, इतने बड़े कीमती धन, सबसे बड़े कीमती धन दिया गया, लेकिन आप उसको यूज नहीं किए, ऐसी भत्ता रख रख के मर गए। तो महाकृपण है यार, ना खुद खाया ना किसी को खिलाने दिया, खुद यूज नहीं किसी को करने दिया। तो ये मनुष्य शरीर सबसे कीमती है इस संसार में, सबसे दुर्लभ वस्तु है, सबसे दुर्लभ वस्तु मनुष्य शरीर है, जिसके द्वारा आप नरक में जा सकते हैं, भूत प्रेत पिशाच बन सकते हैं, देव गंधर्व किन्नर बन सकते हैं, सीधा वैकुंठ जा सकते हैं। सारे जागा को रास्ता खोला है इस शरीर में, बाकी किसी शरीर में नहीं है। ये ध्यान, यही एक चौराहा है मनुष्य शरीर, जंक्शन है, जंक्शन बोलते ना, जहाँ टर्न लेता वही शरीर। तो वो भगवत कृपा से इतने बड़ी साधन प्राप्त हो गया, मनुष्य तनु मिला, मनुष्य शरीर मिला, अरे उसको हम उपयोग किया कि अरे बैठे बैठे खाए पिए बल पक गए मर गए मरने जा रहे हैं। तो कितना भद्दा यूज किया, यही इंद्रिय भोग के लिए। अरे शुक्र कुकर तो आपसे और बेटर है इस मामले में, आप लोग उनके तरफ भोग कर ही नहीं सकते। हम आजकल समाज में भोग करने के लिए सबसे दी हाईएस्ट भोग मानते हैं स्त्री सुख को, है ना, नहीं ये सब जानते हैं अपन, और उसको भोग करने के लिए डरते हैं। रोगे भोगे रोग भयम, रोग ना हो जाए, कोई देख ना ले, कैसे मेंटेन करूंगा, कितने डर रहता है। तो क्या भोग करेगा तुमने इतने डर में? बीमारी की डर है, कमाई की डर है, शर्म की डर है, वो मेंटेनेंस की डर है, तो क्या भोग करेगा? इच्छा तो है लेकिन क्या करूं, मर रहा हूं, देखूं कि कैसे कर। अरे तेरे से तो कितने एडवांस्ड है स्वर, उनको तो कोई शर्म नहीं, बिल्कुल मेन चौक पर वो शर्म करेंगे नहीं, लोग बाग देख रहे हैं, नो प्रॉब्लम। और एक साथ में एक डजन बच्चा भी पैदा कर ले, कोई है भाई कन्वर्ट में पढ़ाऊंगा कि क्या पढ़ाऊंगा, पेंशन कहाँ से लाऊंगा, कैसे मिनट, कोई चिंता, डोंट केयर, नो प्रॉब्लम, वो अपना करे। तो हम लोग के और उन सुअर के साथ कर कंपेयर तुलना किया जाए, भोगों के मामले में हमसे कई गुना आगे हो, तो है ना, नहीं इस प्रकार के भोग में हमसे बहुत गुना आगे, तो सुअर कुत्ता आगे। तो हम मनुष्य कर क्या किया? नहीं, मनुष्य शरीर इस भोग के लिए बना ही नहीं गया। मनुष्य शरीर के लक्ष्य बनाने का उपयोग है तपो दिव्यम पुत्र का जेन सत्वम, तपस्या के लिए मनुष्य शरीर बनाया। जिस तपस्या करके, तपस्या के द्वारा जीवन के मूल्यबोध को समझे, इस मनुष्य शरीर द्वारा कितने बड़े पोजीशन को प्राप्त किया जा सकता है, कहां तक जाया जा सकता है, उसको नहीं किया। ये महासाधन को प्राप्त करके जब ये काम नहीं किया, अरे दस कंजू से कहीं के कृपण। तो इसलिए जो इस मनुष्य जीवन के उद्देश्य को समझ पाया वो है ब्राह्मण, जो उद्देश्य को नहीं समझ पाया वो है कृपण। तो ब्राह्मणत्व केवल जेनियु दो रुपया का धागा डालने से ब्राह्मण नहीं बनते, ब्राह्मण बनते हैं अगर इस मनुष्य जीवन का असली उद्देश्य को कोई समझा और क्या साधन करके उद्देश्य को पूर्ति किया जाए उसको समझाव करने चला, वो ब्राह्मण है। ऐसे ब्राह्मण बनना ही समाज से सबसे श्रेष्ठ वर्ग है, वही श्रेष्ठत्व है। अगर ऐसे कुछ ब्राह्मण बने तो समाज को दिग दिशा मिलेगा, दर्शन दिशा मिलेगा, वो चलेंगे फिर जा करके उनको सुधार। तो इसलिए भगवान स्वयं घोषणा करके बोलते हैं, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म है लजार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। सबसे पहले आपने जीवन को सार्थक करो, कैसे सार्थक करें न समझो, शास्त्र पढ़ करके उनके हिसाब से आपने आचरण करो, यही है सार्थकता, और दूसरे को समझाओ बताओ, यही मनुष्य जीवन के लक्ष्य है। ये उत्तरदायित्व, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान दे गए हमको डायरेक्ट। ये काम भारतवर्ष के जितने मनुष्य है भगवान के द्वारा दिया गया ये काम है, हम लोग हमको ये करना चाहिए। ये काम नहीं करते हैं तो दंडित होंगे, तुझे ड्यूटी दिया गया था क्यों नहीं किया था? तो इसलिए आप जितने भी ये भुज डिस्ट्रिक्ट में तो हजारों लाखों पब्लिक हैं, लेकिन आप गिनते चुनते थोड़े बहुत कम से कम हफ्ता में एक बार आते हैं एक घंटा के लिए, उसमें भी आधा घंटा बाहर खड़े रहते हैं फिर आधे घंटे यहाँ बैठ जाते हैं। तो जो भी हो तो कम से कम इतना तो समझो कि इस मनुष्य जीवन का क्या उत्तरदायित्व है, क्या महत्व है, क्या लक्ष्य है। अरे आधा तो जिंदगी जा चुका है और आधा बचा है, पता नहीं कब एक्सपायरी डेट आ जाए, है ना? नहीं कोई गारंटी है, एक्सपायरी डेट कभी भी आ सकता है। तो उससे पहले थोड़ा अलर्ट होना चाहिए, होकर अगर कर ले तो ही हमारे आज से अगर संकल्प लेकर के हम श्रेष्ठ बनने के लिए तो प्रयास करें तो इस जीवन में नहीं तो अगले जीवन में बन तो जाएंगे। अगर काम शुरू कर दें, अगर पूर्ण भी नहीं होगा तो भगवान बोलते हैं कि मैं चांस दूंगा। शुचिताम सीमताम गे हे जोग भ्रष्ट भी जाए थे, मैं आपको दोबारा फिर चांस दूंगा। कंपार्टमेंटल एक दो सब्जेक्ट में आप प्लक हो गया तो बारा वो पेपर क्लियर कर सकते हैं, ये चांस मिलेगा। लेकिन आप शुरू ही नहीं किए तो कैसे, आप ही अपने कोई एग्जाम में तो कैसे आपको मिला कमेंट। तो इसलिए मनुष्य बन करके मनुष्य जीवन के उद्देश्य जो महत्व लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हो जाइए। अगर पूर्ण भी नहीं हुआ तो कोई लॉस नहीं है, क्योंकि फिर चांस मिलेगा उसको कर लेने पर। नहीं तो कृपण बन करके फिर पशु पक्षी पता नहीं फिर मनुष्य जन्म प्राप्त करने के लिए कितने टाइम वेट करना पड़ेगा मालूम है ना? 84 लाख तो शरीर में जाना पड़ेगा, हर एक शरीर में 100-100 साल रहना पड़ेगा। 84 लाख × 100 हर एक जोनी में 100 साल बिताते बिताते प्रमोशन होते 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 जब भी आकर आएगा, इतने समय वेट करना पड़ेगा फिर दोबारा चांस मिलने के लिए। तो ऐसे जस्ट लाइक दिस उसको मिस यूज मत कीजिए, इतने कीमती चीज है ये, नहीं तो कृपा होगा। हरे कृष्ण। हाँ जी कितने समय? ओके, तो प्रभु जी का आदेश से और 20 मिनट कथा जारी रखना पड़ेगा, है ना? नहीं आप लोग तैयार हैं? जो आए तो खाकर ही जाएंगे तो बात छोड़ी जाए और क्या, अगर एक घंटा भी बोले तभी बैठना पड़ेगा भाई, क्या करें? शाम को आए वो घर में प्रसाद बनाया नहीं होंगे, अब जितने बजे देंगे तब तो खाकर जाएंगे, है ना? नहीं तो ये सब सीख, ये सब चीज जानने के लिए उपाय क्या है, हम करना क्या है, कैसे करूं, कब करूं, किस प्रकार करूं, कहां करूं, ये सब कैसे जान पाऊंगा? मैं करना तो चाहता हूं, हम लोग अच्छा बनना तो चाहते हैं, कैसे? इसके लिए सुनना पड़ेगा, प्रामाणिक स्रोत से श्रवण करना पड़ेगा। बिनु सत्संग विवेक ना, विवेक जागृति नहीं, सुनना पड़ेगा। श्रवण की अशेष महिमा है, बिना सुने बाकी हर काम आप करते हैं बढ़िया से, लेकिन केवल क्लास में आना नहीं चाहते, सारे आप हो जाए कोई मतलब का नहीं। एक कहानी बता करके मैं पूरा करूंगा, वही गांधी जी की कहानी है, एक घटना ऐसे हुआ था। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का समय था भारतवर्ष में, आज से 40 साल पहले, जब उनके असहयोग आंदोलन चल रहा था, इतने मूवमेंट में जो चालू था, तब उन्होंने पूरा क्रांतिकारी भाषण दे करके लोगों को सब क्रांति करा रहे थे। तो एक बार उनका मीटिंग था, जो जलियांवाला बाग कांड हो गया, हत्याकांड, उसके बाद में उनका एक मीटिंग था, गण उद्बोधन पब्लिक मीटिंग था, छपरा बिहार में, बिहार में था एक मीटिंग। पब्लिक को एड्रेस करना था। और तभी जमाने में तो मीडिया इतना एक्टिव थे नहीं आजकल जैसे है, और जो फोटोग्राफर होता था इतने बड़े साइज का टीन कट बॉक्स होता ना, इतने बड़ा बड़ा कैमरा होता था, एक आदमी उठाना ही मुश्किल होता था, वो उठा कर जाएँ और ये फोटो खींचेंगे फिर उसको लग जाएगा 15 दिन में ब्लैक एंड व्हाइट फिर निकल रहा था। तो पेपर ऊपर में इतना एक्टिवेट था ना आज 50 साल पहले की बात है। तो इसलिए बापू जी को लोग जानते भी बहुत कम देखते, जानते नहीं थे लोग, नाम तो सुने हैं बापू जी इसे हैं इसे क्यों उनके चलते, लेकिन उनको देखे नहीं लोग बहुत कम, क्योंकि उनके फोटो भी कोई मीडियम पेपर ही बहुत कम था, सब नहीं बात जानने का। तो जब चारों तरफ पब्लिक के लिए हल्ला हो गया कि छापरा में 4 महीना पहले डिक्लेयर होगा बापू जी आएंगे उनके लड़ा उद्बोधन होगा छापरा बिहार में, तो लोगों तो सब बोले हम जाएंगे बापू जी को सुनेंगे देखेंगे, लोग को तो भारत लोग बहुत उत्तेजना में थे। और बापू जी दिल्ली में थे, गांधी जी दिल्ली से छपरा जाना था उनको, दिल्ली में भी अधिकांश बिहार के लोग थे हजारों संख्या में, और सब जो सुने सब जाना चाहते थे, कोई देखे नहीं बापू जी को उधर, बोले हम देखेंगे इस बार मीटिंग में तो देखेंगे, हमारे देश में आ रहे हैं हम देखेंगे। तो एक ही ट्रेन चल रहा था डायरेक्ट दिल्ली से बिहार और एक्सप्रेस, तो बापू जी को नेता लोग को पूछे, तब तो फोन भी नहीं था, चिट्ठी लेकर के टेलीग्राम फोन करे पूछे बापू जी आपके लिए आप आएंगे व्यवस्था क्या करें, बोले आपको कुछ नहीं आप मीटिंग का अरेंजमेंट करो मैं ट्रेन में आ जाऊंगा, मैं खुद पहुंच जाऊंगा, मैं टिकट करके खुद आ जाऊंगा। वो तो बड़े सिंपल आचरण वाला थे। तो उन्होंने बापू जी ने जा करके महीना पहले से तभी ट्रेन का, आजकल तो थर्ड क्लास कंपार्टमेंट है ही नहीं, उड़ गया जो लकड़ी वाला होता था उसको जनरल बोलते हैं आजकल, नहीं होता है तो, अच्छा वो जनरल होता है, हाँ थर्ड क्लास नहीं बोलते उसको, जनरल होता है, एक स्लीपर एक जनरल। तो जो भी हो तो उनका भी रिजर्वेशन हुआ करता था पहले, हाँ इसलिए बोलता हूँ उसका रिजर्वेशन होता था। तो उन्होंने जा करके एक रिजर्वेशन अपना खोले, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 घंटा का रास्ता था, उन्होंने अपने एक इसी कंपार्टमेंट में एक रिजर्वेशन विंडो सीट रिजर्व किया अपना, उनका टिकट खरीद के रिजर्वेशन टिकट अपने पास रखे, और जिस दिन उनको यात्रा करना था उस दिन लगभग घंटा पहले उन्होंने स्टेशन में चले गए, जानते हैं गाड़ी आके लगेगा भीड़ होगा कुछ होगा, अपना समय पर पहुँचूँ, अपने टाइम पर बहुत पहले पहुँच गए थे स्टेशन में, जैसे गाड़ी आके लगा प्लेटफॉर्म में तो अपना निर्दिष्ट बगी पर कंपार्टमेंट में जा करके अपना सीट पर जाकर बैठे अपने टिकट उनके पास था, और गाड़ी छोड़ने के कुछ समय था, अरे भीड़ ऐसे आया, आप तो आप बिहार के स्टेट के लोगों को तो जानते होंगे उनके व्यवहार ऐसे कैसे जो भी हो, तो आए सारे प्योर फिल्टर वाले बिहार के लोग, सब क्यों उन्हीं के देश में हो रहा है, तो आए आ करके इतने संख्या में आए लोग, इतने संख्या में आए कि पूरा गाड़ी जाम प्याक ऊपर में चढ़ गए। अब देखें गुजरात में जाते हैं ना, बंगाल बिहार में तो लोग नीचे बैठने से पसंद नहीं करते, गाड़ी के अंदर ऊपर जितना बैठना पसंद करते हैं, ऊपर ज़्यादा बैठते हैं तो ऊपर में भी बैठ गए सब लोग, अंदर जाम था, और जो कंपार्टमेंट में बापू जी बैठे थे उस कंपार्टमेंट में कुछ यंग काम करने वाले इसे यंग मास्क कुछ भर गए, उसमें आ करके देखे भीड़ बहुत था, अंदर आ गए, एक कंपार्टमेंट में 72 लोग बैठने का सीट होता है, वो तो 100-125 भर गए, और वो बापू जी पहले बैठे थे, आ करके उनको देखे बैठा है बूढ़ा, इतने चढ़ गए उनके ऊपर, है बूढ़ा हट बैठ हट यहाँ से आके बैठा है इधर, वो बोले भैया है मेरे पास टिकट है, रिजर्वेशन दिखा था आज रिजर्वेशन चलता है, अरे बापू जी के मीटिंग में गाड़ी चलता है रिजर्वेशन दिखाता है हट यहाँ से, अरे रिजर्वेशन आज कोई टिकट नहीं आएगा चल, हटा दिया अपने सीट से, वो बेचारा आकर उस तरफ बैठे को नहीं, चलो यहाँ बैठने जाना हाथ बैठ, वो बेचारा चुप हो गए, मारपीट करें यंग वहाँ लड़के लड़ते बैठ गए, और पूरे प्याक जो तीन होता ना पूरे ऊपर ऊपर में बैठे हैं नीचे बीच में बैठे हैं नीचे बैठे, सारे लकड़ी का होता है उठाने वाला नहीं, सारे भरे हुए हैं प्रजाम का, बापू जी साइड में उनका विंडो सीट था बैठा के, यहाँ बैठे थे यहाँ कर बैठे बैठ कर, बोले उनसे कौन पढ़े अपने किताब निकाल कर पढ़ रहे थे, बोले उनसे तो बदर बदर करते रहते हैं सुनूंगे ना, अपनी किताब पढ़ रहे थे, गाड़ी चल रहा, पूरे डब्बा में प्रत्येक एक व्यक्ति का मुख से जो बात निकलता है एक ही चर्चा के विषय है, क्या जानते ना बापू जी के बारे में, हम देखा नहीं, आज तो देखेंगे कई साहब में सुना ऐसे इतनी महान है ये है वो है, पूरे गाड़ी ऊपर से नीचे तक उन्हीं की चर्चा चल रहा है और स्वयं बैठ के इधर पढ़ रहे हैं, उन्हीं को हटा कर गाली दे बुढ़ा हट यहाँ से कह करके उनकी चर्चा चल रहा है, सुन रहे हैं उनकी किताब पढ़ रहे हैं। तो चर्चा करते करते उनके पास हम बैठे थे, मैं निकालते ना ऐसे क्या बोलते हैं उसको तम्बाकू निकाल करके लगा करके खाए चला, और ये बातचीत फिर उसके मुंह में डाल करके बातचीत करते करते थूकना पड़ता था, क्योंकि वहीं बैठे थे उनके सामने यहीं थूके। तो बापू जी को ये लगा साहब तो विंडो खुला है, विंडो में बाहर थूक सकते थे, यहीं ट्रेन के अंदर थूके। तो बोले भाई साहब ये विंडो तो खुला है बाहर थूक सकते थे, बोले बड़ा धर्मार्थ दिखा रहा है तेरे बाप का है क्या, अरे और चढ़ गए दो चार मिले, अरे देखा है ये बोलता रहता है तेरा क्या गया। बोले भाई गलती हो गया आपको ठीक है, और क्रिटिसाइज कर हंसने लगे देखो उनको, तो उन्होंने क्या कहें उनके लिख, तो इसी बातचीत कर रहे तो किताब पढ़ रहे थे, उनके एक पेज फाड़ करके वो जो थूके थे उनको अपने हाथ से पोछ करके उठा कर लेकर खुद फेंक दिए सभी के सामने। बोले अरे ये बड़ा महात्मा लगता है साधु लगता है, वो तो देखे कैसा करता, दूसरा आगे बैठा था वो भी थुक वही थका, उनको देखे बोले इतना खराब है क्या करें, और एक पेज फाड़े फिर उसको पोछ कर लेके बोला अच्छा तीसरा और थूका, ऐसे 15 बार थूके अलग अलग व्यक्ति भरे थे इधर, एक ही प्रकार के विचार के लोग थे सब, वही थूकते गए वो 15 बार किताब आधा फाड़ गए, उन्होंने फाड़ के फेंकते थे फिर उठाकर क्या करें, जब 15 बार थूकते रहे और उठाकर फेंकते रहे कोई कुछ बोलते नहीं धीर भाव से उठा फेंकते रहे, तो उनको शर्म आने लगा, किनको थूकने वालों को, बोले कैसा है आदमी कुछ बोलता भी नहीं, नहीं कुछ बोलता नहीं कुछ सुनता नहीं चुपचाप करता है, अरे कैसा आदमी है यार कैसे गवार है समझा नहीं, चलो उनसे बैठ कर बोर हो गए हम लोग उनके साथ बैठ करके, अब उनको हटने लगे उनसे देखो मत बात मत करो पता नहीं कैसा आदमी है पागल ही समझेंगे उसको और क्या करेंगे। तो इस प्रकार फिर करके उन कर रहे थे, तो इतने में 4 बजने वाला था 4-5 तो स्टेशन अप्रोच हो रहा था छपरा, जैसे गाड़ी छपरा स्टेशन में पहुंचा देखा लोग माला लेकर के बड़े बड़े नेता लोग जो हैं माला लेकर के और बाजे गाजे लेकर के आए हैं बापूजी को लेकर जाएंगे सीधा यहाँ से मीटिंग में जाएंगे स्टेज पर, तो जो लोग सब गाड़ी तो पूरा ऊपर से नीचे भरा हुआ था लोग उतरे, बोले अरे बापूजी इसी गाड़ी में आए हैं, अरे यार कहाँ गए हम तो देखे हम देख लिए होते देखे होते, अब इतने भीड़ था कि बापू जी तो उतरने बोले सब जाने जो उतर तो सर उत्पटांग में बाद में उतरूंगा इतने तो चढ़ जाएंगे ऊपर में, तो बापू जी चुपचाप बैठे थे लोग सारे ऊपर से नीचे इधर से जाम फटाफट सब निकल रहे थे, छपरा स्टेशन आ गया और जो लोग बापू जी किसी को फोन करके फोन तो था नहीं तो बताया नहीं थे कि मैं इस कंपार्टमेंट में आ रहा मुझे रिसीव करो आकर, खबर भी नहीं दिए थे किसी को, वो बेचारे इस डब्बा से इस डब्बा भागे दौड़ रहे हैं इंजन से लेकर इधर भाग रहे हैं कौन सा कहाँ आए होंगे, फर्स्ट क्लास में तो कभी आए ही नहीं होंगे किधर आए होंगे क्या पता, वो बेचारे घूम रहे हैं, वो जितने लोग उतरे देखे कि बापू जी इसी ट्रेन में वो भी कोई नहीं जाते हैं प्लेटफॉर्म छोड़ते, हम देखेंगे बापू जी कहीं देख लेंगे और आप पता नहीं, वो भी दौड़ रहे हैं उनके साथ दौड़ते दौड़ते इधर से उधर उधर सब जब गाड़ी से उतर गए तब लास्ट में बापू जी धीरे धीरे इस कंपार्टमेंट में नीचे जैसे उतरे जैसे प्लेटफॉर्म आ गए किसी का नजर, अरे ओ बापू जी इधर है एक नेता ने पहचान था देखा, अरे दौड़े दौड़े बापू जी हम आ रहे हैं दौड़े जो इस कंपार्टमेंट में जो लड़के थे वो भी उनके साथ दौड़ कर आ रहे थे, बोले रे यही बूढ़ा है रे राम राम, अरे उन्हीं के साथ 6 घंटा में सफर करके आए क्या क्या उनके साथ व्यवहार किया, अरे यही मैंने देखिए 6 घंटा उनके साथ में बैठे धक्का मारे गाली दिए क्या क्या मिस्ट्रीट किए उनके साथ में, उनका बुद्धि और बढ़ते जा रहा सुधा नहीं, अभी केवल सुन लिए कि यही 1 सेकंड में उनका ऑपरेशन हो गया बुद्धि सुधर गया, अरे रे 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 हमको इसे किए उनका पैर पकड़ना चाहिए सही में मार सही में ऐसा किसे जो बदलाव आया 1 मिनट के अंदर किस कारण से बदलाव आया सुन करके, देखे तो 6 घंटा साथ में देखे थे, दर्शन बर्शन खूब किए थे, कुछ आया था बदला? जब सुने एक सेकंड में ऊपर से नीचे टप टू बटन बदल गई, रे कितने सम्मान भाव आया, आदर बुद्धि हो गया, व्यवहार एक बार बदल गया। किस कारण से? श्रवण मात्र से। यह है श्रवण की महिमा। आप कितने पास में बैठो, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, दिमाग नहीं, शुद्ध बुद्धि नहीं सुधरने वाला है, बदलने वाला है, लेकिन सुन लेने से एक बार चमक जाएंगे, अरे ये है श्रवण की महिमा। तो इसलिए श्रद्धा पूर्वक श्रवण क्या कीजिए। और नहीं, कितने बजे प्रसाद? 9 बजे, 15 मिनट पहले आ जाएंगे, चलेगा? जानते हैं हम लोग कोई प्रोग्राम करते हैं, पहले बोल देते हैं प्रसाद पहले दे देंगे, बाद में क्लास, हाँ पहले आ जाते हैं, हर लोग पहले आ जाएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे कभी। आए आकर बैठेंगे, बोल बैठो ना, बनना जैसे प्रभु जी, 15 मिनट लगेगा, भूख लग रहा है, ऐसे करके क्लास निकालेंगे, नहीं तो कभी नहीं बैठेंगे। अगर उनको बोलो कि टाइम दे दो, इससे प्रसाद है, तो फिर उसी टाइम में आएंगे, पहले कभी नहीं आएंगे। मुझे एक व्यक्ति मिले थे दक्षिण अफ्रीका में, धर्मान, बोले प्रभु जी क्या कुछ होता नहीं, मैं तो इतने साल का 25 साल का डिबोटी हूँ, मैंने 25 साल से डिबोटी हूँ, इन्हें करता हूँ, ऐसे करता हूँ। मैं बोला आपको मंदिर आना चाहिए रेगुलर, ऐसे प्रोग्राम। बोले आई एम रेगुलर, मैं रेगुलर हूँ, रेगुलर है, हाँ रेगुलर, कब कब आते हैं? आते हैं क्लासेस अगर, नहीं नहीं क्लास में नहीं, लेकिन रेगुलर, क्या रेगुलर, क्लास तो कभी आते नहीं, रेगुलर कैसे, कब आते हैं? ना हर साल जन्माष्टमी में आता हूँ, हर साल जन्माष्टमी विदाउट फेल। मतलब कब आते हैं? ना ठीक प्रसाद से 5 मिनट पहले, कभी मिस नहीं किया अभी तक, 25 साल से जन्माष्टमी का फीस इतने बढ़िया होता है, कभी मिस नहीं किया, रेगुलर हूँ बिल्कुल। मतलब इससे रेगुलर है तो प्रयोग होता है, जिस चीज में रेगुलर है उस चीज होता है। तो इससे रेगुलर नहीं, इस चीज में रेगुलर होना चाहिए। ये जो भोजन खाते हैं ये किसके लिए है? कवर के लिए, शरीर के लिए है, वो हमारे लिए नहीं, वो हमारे कवर के लिए, जो पैकेज है ना वह, उसके लिए, शरीर के लिए। हमारे लिए क्या है? ये है प्रसाद, शरीर के लिए है, हमारे लिए नहीं है ना, हमारे लिए ये भोजन है, ये आत्मा की भोजन है, ये शरीर के भोजन है। और आत्मा को भोजन तो कभी दिए ही नहीं, इतने दुबला पतला मर रहा है वो बेचारा, और शरीर को केवल तंदुरुस्त करते चले जाए तो कैसे हो, है ना? तो इसलिए इस भोजन में अब भाग लेंगे, आत्मा के भोजन सही तरह से हाई प्रोटीन से अच्छा पोषण तत्व उनको मिलेगा, सब जा करके वो कुछ कम बनेगा। और केवल शरीर को करने से क्या होगा? जैसे कोई बाढ़ आया था और बाढ़ में नदी में बड़े स्रोत चल रहा है, और एक आदमी किसे गिर गया, पैंट कोट टाई पहना हुआ लेकिन बहते चला जा रहा है, किस व्यक्ति ने देखा, बोला अरे दीदी बह गया बह गया, बड़ा तैराक था, मैं जाता हूँ तर, फटाक से कूद पड़ा, जाके पकड़ लिया उसका कोट को, पकड़ करके लेके उठा के लिया, कोट को खींच कर ले आया, तो उसको बड़े शाबाशी देंगे, बोले बचा दिया कर, अरे मूर्ख कहीं की तो क्या बचा ले, कोट ओवर कोट को खींच कर लाए, उसमें क्या होता है, वो तो गया। ठीक इसी प्रकार हम केवल शरीर की टेक केयर करेंगे, ये तो मूर्खता है, वो तुम्हारा शरीर से कवर से क्या मतलब, केवल पोशाक, शरीर को पोशाक के जैसा माना गया, गीता में कहा गया वासान सी जीर्णानी जथा विहाय नवानी गृह्णाति नरो पराणी तथा शरीराणी विहाय जिन्ना। तो ये शरीर की तरह, शरीर को पोशाक की तरह माना गया, जैसे पोशाक पुराना जीर्ण हो जाता है तो उसको बदला कर फिर नया पोशाक पहनते हैं, तो इसे शरीर परिवर्तन, मृत्यु वही केवल शरीर परिवर्तन ही है और कुछ नहीं, नया कपड़ा पहनना है, लेकिन कपड़ा हमारा हिसाब से नहीं बनता है, हाँ वो साइज में माप चुप नहीं लेते, वो तो पहले फिक्स है, जैसे आचरण आपका है इसी के हिसाब से उसी के नाप से कपड़ा बनेगा, पोशाक बनेगा। अगर हम कुत्ते के भाव से जिंदगी जिया तो चार पर वो ड्रेस मिलेगा, ये ड्रेस नहीं मिलेगा, वही साइज का मिलेगा, हाँ जिस प्रकार का हमारा व्यवहार आचरण रहा उसी के नाप चुप से ड्रेस मिलेगा वो फिटिंग जिस प्रकार का, तो इसी प्रकार हमारा व्यवहार को अगर नहीं सुधारेंगे तो आगे तो हमारे ड्रेस तैयार हो रहा है, कौन सा साइज बनेगा, किसे चार हाथ वाला कि दो हाथ वाला क्या पता कि बिना हाथ वाला तो इसलिए हमेशा कम से कम ये मनुष्य शरीर प्राप्त करके इतना तो करना चाहिए, क्योंकि बाकी 84 लाख प्रकार शरीर में किसी में ये सुविधा नहीं दिया गया, ये फैसिलिटी केवल इस डिजाइन में है, भगवत चर्चा करना, शास्त्र आदि पढ़ना, कोई और कुत्ते बिल्ली चिड़िया आकर बैठेंगे क्या, नहीं मनुष्य ही बैठेगा, ये मनुष्य शरीर में केवल सुविधा दिया गया। जब इतने सुविधा इस चीज में दिया गया है तो सुविधा का किस लिए दिया गया, जिसे आपने कभी नौकरी तक करते होंगे, आप लोग सब काम दाम करते होंगे, कोई कंपनी में आप जॉब करते हैं तो एक व्यक्ति काम करता है तो बेचारा लेबर है, तो साइकिल लेकर जाता है अपना टिफिन बॉक्स लेकर के, अब जा करके वहाँ तगड़ा काम परिश्रम करता है और 8 घंटा मेहनत करने के बाद उनको 4-5 हज़ार रुपये मिलता है, बेचारा अपने लंच पर खा कर फिर वापस साइकिल में आता है। हजारों लोग ऐसे हैं, उनको लेबर बोलते हैं। इसी कंपनी में और एक प्रकार लोग काम करते हैं, वो मोटरसाइकिल चला के जाता है, वो लंच बॉक्स नहीं लेता, वो तो वहाँ टिफिन में कैंटीन में खाता है, मोटरसाइकिल लेकर जाता है और काम भी नहीं करता, वो केवल बोलता है यहाँ ऐसे करो, इधर जाओ, यहाँ लेकर आओ, बोलता रहता है। उनको हम क्या बोलते हैं, सुपरवाइजर, करेक्ट, वो सुपरवाइजर बोलते हैं। और भी एक व्यक्ति इस कंपनी में काम करता है, वो तो कार में जाता है, साइकिल में नहीं मोटरसाइकिल में, कार में जाता है, वो ना तो बोलता भी है, कुछ नहीं करता, वो तो बस जाकर के अपना ऑफिस में बैठता है और कुछ खाता काम में कुछ काम दाम करता है, कुछ करता है, तो उसको मैनेजर बोलते हैं हम, उनका तनख्वाह उनसे भी ज़्यादा। और भी एक व्यक्ति काम करता है, और उसके लिए तो जूता पहनाने वाला एक आदमी है, उनको तो फ्लैट भी मिला है, उसको गाड़ी ड्राइवर लेकर आकर धो धा करके सामने लगाता है, सार बैठी बैठ के जाता है, वहाँ तो बिल्कुल एसी कमरा में बैठता है, मूविंग चेयर हिलता भी नहीं, कुछ करता नहीं, फाइल फाइल कर साइन करता है, बस बैठा रहता है, उसको MD बोलते हैं। वो एक आदमी और ये हजार आदमी, और उनका कितने कीमत, जब इतने सुविधा उनको दिया गया है, इतने गाड़ी बंगला वाड़ी नौकर चाकर एसी रूम ये सब दिया गया, क्यों दिया गया, कुछ करता नहीं है, है ना, नहीं कंपनी क्या इतने मूर्ख है उसको देता, क्यों देते उनको, बेचारे इतने मेहनत करते हैं 8-8 घंटा, उन्हें अगर उनको किसी उठा कर बैठा देते चलेगा, नहीं, ये 10,000 को एक मैनेज करता है, दिखता नहीं, शरीर में कुछ नहीं करता, मन से करता, ये है काम की फर्क, जो शरीर से काम करते हैं वो नीचे स्तर के हैं, जो वाणी से काम करते हैं सुपरवाइजर डेढ़ थोड़ा, और जो मन से काम करते हैं उससे ऊपर है, बुद्धि से काम करते हैं उससे ऊपर है, है ना, जैसे शटल होते जाएं ऐसे ऊपर करो, तो उनको जो मनुष्य शरीर में इतने बुद्धि दिया गया है, इतने समझ जैसे व्यवस्था दिया गया है, तो काम में तो MD जैसा करना चाहिए ना, और लेबर जैसा काम करेंगे तो आपको फिर क्या बोलो, गुड फॉर नथिंग, लेबर बनाओ उसको, उनको 4 पैर देना था, 2 पैर क्यों दे दिया उनके, यहाँ इसके लायक है ही नहीं, यही बना देंगे, बोलेंगे चलो कोई बात नहीं, अगर 2 पैर था 4 पैर प्रमोशन हो गया, उसमें क्या है, दो एक्स्ट्रा मिला अरे एक्स्ट्रा मिला, अभी गर्मी में बाहर जाता है, अरे बड़े प्यास लगता है, तो प्रभु जी ने ठंडा मीठा फिल्टर के पानी के प्याऊ लगा रखे, और खोला जा करके आराम से ग्लास भर के पानी पिया। अगर आप श्रेष्ठ पशु भी बन गए, घोड़े हाथी गाय भी बन गए भुज में, तो प्यास तो लगेगा, अब जाएंगे फिल्टर पानी की टैप लगा पी सकते हैं, अपने प्यास लगेगा, पानी सामने है, फ्री है, लेकिन पी नहीं सकते, 4 हाथ होने से फायदा क्या है ना, ये सुविधा नहीं दिया जाएगा। तो केवल डिजाइन बदल जाने से कितने कष्ट भोगना पड़ेगा, कितने कष्ट भोगना पड़ेगा, तो इसलिए अगर हम इसी जो मिला हुआ है, जो हमारे साधन, उसको अगर सही सदुपयोग ना करें तो आगे चल करके कौन सा ड्रेस हमको मिलेगा क्या पता, और फिर कितने दुख झेलना पड़ेगा। अभी आपको दुख लग रहा है, उसको मिसयूज कर रहे हैं, अब आगे चल कर कितने बड़ा। तो इसलिए सब कुछ सतर्क हो करके उसका सही उपयोग करें इस साधन का। मनुष्य शरीर रूपी जो महासाधन है उसको अगर सही उपयोग किया जाए, अगर कम समय हरे में पहले से करता, डरने की बात नहीं, अभी से आज से अगर शुरू करो, अरे शुरू करना, शुरू करने के लिए विचार करो, तब भगवान बोलते मैं तब भी मदद करूंगा। भगवान तभी मदद करने के लिए तैयार है हर प्रकार से। अगर हम इसे शुभ संकल्प ले करके शुभ कार्य को शुरू करते हैं तो जो भी आवश्यकता मदद उन्होंने करते हैं, वो करते हैं। कितने समय लगे क्या कर करें, तो इसलिए हम लोग को हमेशा इस प्रकार पॉजिटिव एटीट्यूड, इस प्रकार के भावना जो हमको दिया गया है, प्रभु जी ने दिए हैं सुविधा, उसको किस प्रकार सदुपयोग करें, सही उपयोग करें, जो हमारे पास बुद्धि वृत्ति शक्ति सामर्थ्य जो भी कुछ हैं, उसको सभी केवल उन्हीं के इच्छा से उन्हीं के सेवा में अगर उपयोग करें, यही हमारे सबसे बड़ा सफल उपयोग होगा, यही सबसे बड़ा सफल कर्म होगा, इसी से हमारा जीवन सफल होगा। नहीं तो ऐसे कृपण होकर रह जाएंगे। क्या होगा, प्रसाद रेडी हो गया क्या?
हाँ।
हो गया आपका ग्रीन लाइट, हो गया, भूखा नहीं जाएंगे हम लोग, है ना? नहीं हाँ हाँ हाँ, टाइम में हो गया है। देखिए भगवान के कथा सुनने से बनी बनाई प्रसाद गरम गरम मिलेगा, है ना? नहीं ये तो है कम से कम। आपको खुद बनाना भी नहीं पड़ेगा, रेडीमेड प्रसाद। हाँ जो बोलना चाहते हैं।
आप कैसे आए?
मैं अभी ट्रेन में आया। अरे कोई भक्त चरित्र सुनने से प्रेरणा मिलेगा, हमारा चरित्र सुनने से क्या? हम जब अपना पास्ट बात बताऊंगा, आप अभी से मुझे जूता मारेंगे, उठ के चले जाएंगे, बोले अरे हम टाइम खराब किए उनसे सुन करके, यार ये इतने खतरनाक व्यक्ति था, इतने भद्दा आदमी था, है ना? नहीं इतने खराब था तो क्या बता, मुझे शर्म ही लगता बोलने की, कि बोलने से आप लोग मुझे भाग जाएंगे, फिट चले जाएंगे, है ना? नहीं तो इसलिए जो महान भक्त हैं उनके चरित्र सुनने से प्रेरणा प्राप्त होता है। हम तो कहीं के नहीं, आप लोग से देख करके जो इतने लोग आ रहे हैं, खाना मिलता है चकाचक, पूरी हलवा खिचड़ी देख करके लोग आ गए। बाहर में जाओ कितने काम धंधा करना पड़ता है, यहाँ आ जाने से मिलता है चकाचक, आ गए अब क्या है ना? कई लोग तो